शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है विश्व में शांति। विश्व में शांति कैसे होगी? विश्व में शांति कब थी, फिर कैसे आएगी? कई समझते हैं ना कि युद्ध न होगा तो शांति होगी। आजकल उसी पर ही प्रयास चल रहा है, युद्ध न हो, आतंकवाद न हो, ये सब न हो, शांति हो। परंतु शांति का आधार क्या है? शांति की परिभाषा सच्ची क्या है? शांति तो मन की स्थिति है। हमारी सोच पर ही शांति और अशांति का आधार है। तो कैसे शांति आएगी? विश्व में शांति होने से व्यक्तिगत शांति नहीं आएगी, पर व्यक्तिगत शांति से विश्व में शांति आएगी। शांति की बूंद हर एक की मिले तो विश्व में शांति आएगी। तो आज की सारी मुरली एक ही टॉपिक पर है, शांति। कैसे आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो शांति है, भटकने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ धक्के खाने की भी जरूरत नहीं है शांति के लिए। तो सुनते बाबा के माँ वाक्य। और सबसे बड़ी बात कि विश्व में शांति स्थापन करने के लिए तुम बच्चे निमित्त हो। हम बच्चे ही अगर अशांत रहेंगे तो फिर विश्व में शांति कैसे आएगी? जब हम बच्चे ही निमित्त हैं विश्व में शांति लाने के लिए, तो हमको तो शांति में रहना है। अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो शांति कैसे आएगी? तो आज बाबा ने वो भी सावधानी दी है कि लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर सतयुग में क्या पद पाएंगे? झाड़ू लगाएंगे। बाबा ये भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद का पालन नहीं किया तो वहां क्या पद मिलेगा? तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 2/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? हम सब ये तो समझते हैं ना कि हम बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं। ईमानदार भी हैं, आज्ञाकारी भी हैं, फरमान बरदार भी हैं। लेकिन बाबा किन बच्चों को फरमान बरदार कहेंगे? उत्तर, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकरर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। कितना बड़ा फरमान है, अमृत वेले उठकर नहा धो के बाबा की याद में बैठना, यही सबसे बड़ा फरमान है। तो बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे और कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है, ओम शांति माना, ओम माना मैं आत्मा हूं और ओम आत्मा शांत स्वरूप है, ओम शांति का अर्थ। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है, ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर और सब आत्माओं का एक बाप है, ये सब कहते हैं। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए, कौन सा ऐसा चित्र है जिस पर विश्व में शांति हो होगी ये सिद्ध होता है, कौन से चित्र में? तो बाबा कहते हैं अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कौन सा चित्र है? सृष्टि चक्र का। बाबा कहते चक्र पर ले आओ कि इस समय है एकदम अशांति और इस तरफ है पूर्ण शांति और बीच में ये संगम युग, जबकि भगवान आकर विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कैसे करते हैं? ज्ञान और योग से। और कैसे सब आत्माएं परमधाम जाती है और फिर शांति की दुनिया आती है। तो ये बाबा कहते हैं अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। सृष्टि चक्र में संगम युग बहुत स्पष्ट दिखाया है। ये है सतयुग नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता सुख शांति है। उनको कहा ही जाता है सतयुग हेवन। ये तो सब मानेंगे, नई दुनिया में सुख और नई दुनिया में सुख है, दुख तो हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति ये दोनों जो बातें हैं, शब्द है, इन शांति अशांति की बात यहां विश्वपरी होती है। परम धाम के लिए शांति अशांति नहीं कहेंगे क्योंकि शांति है माना कभी अशांति थी। अब परम धाम में तो सदा ही शांति है तो वहां शांति अशांति का तो प्रश्न ही नहीं। शांति और अशांति की बात यहां विश्व पर ही होती है। अब वो तो है निर्वाण धाम जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की ही बात उठानी चाहिए और बातें सब बाद में, पहले विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए जब भाषण करते हैं। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको फिर प्राइज भी मिलती है। दो देशों में सुलह कराई, युद्ध को रोका, तो फिर कहेंगे उनको तो विश्व उन्होंने शांति स्थापन की तो शांति का पुरस्कार देते हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिलती है, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में क्या? वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं है। शांति लानी है अपने अंदर, पहले लानी है तब विश्व में शांति होगी, इसके लिए दौड़ा दौड़ी की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है तो अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। हमारा बाप एवर शांत है, सदा शांत है, तो हम भी उनके बच्चे शांत स्वरूप है। ये वर्षा उनसे मिलता है, शांति का वर्षा केवल एक बाप से मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे, बाबा शांति धाम में ले जाते हैं लेकिन उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। शांति धाम को मोक्ष तो बाबा कहते हैं भगवान को भी नहीं मिलता, उनको भी आना पड़ता है एक बार सृष्टि पर, तो सदा के लिए मोक्ष मिल जाए फिर आए ही नहीं सृष्टि पर, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान को भी आना पड़ता है, तो हम कैसे सदा के लिए मोक्ष पा सकते हैं? मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पाठ में जरूर आना होता है। कहते हैं भगवान, कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? कितनी अच्छी पॉइंट है ये। कोई कहे ना मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, अरे भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता, उनको भी कल्प में एक बार आना पड़ता है, तो हम आत्माओं को कैसे मिलेगा? तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते, बाबा दुनिया में तो नहीं जाएंगे ये बातें समझाने, तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। अब देखो बाबा ने बच्चों को चढ़ाया है, तुम बच्चों को सुनाने की प्रैक्टिस अच्छी है। तुम भाषण करते हो, बाबा तो भाषण नहीं करते, शिव बाबा तो सागर है, कभी ये पॉइंट कभी वो पॉइंट, लेकिन एक ही टॉपिक पर भाषण। बाबा कहते तुम बच्चे ही कर सकते हो, मम्मा करती थी, एक ही टॉपिक लेती थी और उस टॉपिक पर पूरी मुरली चलाती थी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। बाबा दुनिया के आगे नहीं सुनाते हैं, केवल ब्राह्मणों के आगे ही सुनाते हैं। विचार सागर मंथन तो तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। सारा दिन कई समझाते रहते हैं ना, गले ही थक जाते हैं। तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में तो सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहाँ कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। हाँ बाबा के बच्चे अथक होके सेवा करते हैं। यहाँ तो घर है, अब मधुबन में ये सब नहीं करते, यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं याद में। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकरर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, 2 बजे से बाबा का कमरा खुल जाता है, तो बच्चे आकर 2 बजे भी बाबा के कमरे में बैठ जाते हैं। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे। हाँ ऐसे टाइम नहीं, चलो बाबा की याद में बैठे 2 बजे उठ गए और फिर जो बच्चे उठे और झुटका खाए। अब 2 बजे उठे बाबा के कमरे में बैठे, तो अभी नींद तो पूरी हुई नहीं है, तो बाबा के कमरे में ही झुटका खाते और झुटका खाए। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा है, जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए, फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। इसलिए 4 बजे का टाइम बाबा देते हैं, तो उनको अगर नहीं आते तो फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को भी ऐसे ही है, कपूत बच्चे भी हैं सपूत बच्चे भी हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, मालूम तो सब पड़ जाता है ना। अब बाबा ने उस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो विश्व में शांति है, तब स्वर्ग है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है, अनेक धर्म हो तो शांति नहीं हो सकती है, शांति तब है जब एक ही धर्म हो, एक धर्म हो तब शांति हो सकती है। जो धर्म बाप स्थापन कर रहे हैं वही जब धर्म हो सृष्टि पर तब विश्व में शांति है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहां है ही शांति, 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। पूर्णमासी की रात आकाश में देखो कितनी चमक है। पूर्णमासी पर चंद्रमा संपन्न भी है तो संपूर्ण भी है, लाइट में संपन्न है और आकार में संपूर्ण है, तो कितना शोभता है। उनको फुल मून कहा जाता है, फुल मून पूरा एकदम फुल मून कहा जाता है। त्रेता में फिर तीन हिस्सा कहेंगे, थोड़ा कम हुआ अगले दिन से पता चल जाता है कि चल फुल मून तो कल था आज थोड़ा सा कम हुआ है, तो त्रेता में 3/4 ही कहेंगे, 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, थोड़ा फर्क पड़ गया, 2 कला कम हो गई त्रेता में। संपूर्ण शांति तो सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी, कुछ न कुछ खिटखिट होगी, तो त्रेता तो 25% थोड़ी पुरानी हुई तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में तो बिल्कुल शांति है और नरक में बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इसमें आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। बड़े बड़े नेताएं, विश्व के नेताएं आपस में मिलते हैं ना, कैसे शांति हो, कैसे शांति हो, पहले ये सब नहीं करते थे इतना। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है, बाबा के बच्चों द्वारा हो रही है विश्व में शांति। सब शांति का अनुभव करते हैं तो विश्व में शांति क्यों नहीं आएगी। क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है, आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, पर कैसे होगी, क्या होगा, क्या करना होगा। बाबा कहते दे अभिमानवश ऐसे ही कहते हैं, विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब तुम्हारे पूरे हुए हैं, ये बाप ही आकर के समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वो कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। फिर भगवान को पुकारते हैं कि आप ही आके विश्व में शांति स्थापन करो, तो भगवान कब आते हैं स्वर्ग, हाँ विश्व में शांति लाने, तो जब विश्व में शांति है तो स्वर्ग है। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान हेवन कैसे रचते हैं। भगवान ही हेवन रचते हैं सृष्टि पर कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण तो रच न सके, अब स्वर्ग श्री कृष्ण तो नहीं रचेगा, भगवान रचता है और उसमें सबसे प्रथम राजकुमार तो श्री कृष्ण है। उनको कहा ही जाता है देवता, श्री कृष्ण को। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, क्यों नमन करते हैं, क्योंकि उनमें दैवी गुण है, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। अभी भी कलयुग में भी ऐसे कई हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, बहुत प्रेम से चलते हैं, तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है, ये तो जैसे देवता है। और लड़ने झगड़ने वाले को क्या कहेंगे, ये तो जैसे असुर है, लड़ता ही रहता है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी पहले तो बहुत होता था, अभी तो पता नहीं होगा कहीं ना कहीं, अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी थे ना, तो बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, मानो ये सारी बहुएं सब इकट्ठी, बेटे इकट्ठे, एक साथ धंधा, एक ही किचन में खाना पकता है, सब इकट्ठे रहते हैं। तो 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम क्षीर खंड हो चलते हैं। कहां तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, केवल 2 होंगे तो भी लड़ेंगे आपस में। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीर खंड हो रहना चाहिए। सतयुग में खीर खंड होते हैं ना, यहाँ खीर खंड होना संभव है या नहीं संभव है? नहीं, दुनिया में तो नहीं संभव है, पर यहाँ तो संभव है ना। यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो, सब हो नहीं, तुम सीखते हो। तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया है, किसको दुख तो नहीं दिया है। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। बाबा के बच्चे जांचते होंगे जरूर ना, तभी तो बाबा कहते ये करो, परंतु बाबा सर्टिफिकेट देते नहीं, जांचते हैं। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले, अगर घर में ही अशांत करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? हम शांति स्थापन करने वाले हैं, हम ही अशांति फैलाएंगे तो शांति कैसे आएगी? फिर शांत फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है ना, लौकिक में अगर बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना, ये तो मुआ भला, तो मर जाए तो अच्छा, इतना तंग करता है। बाप भी कहेगा, दुखी हो जाएगा बच्चे से, तो कहेंगे ये तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो फिर पक्की हो जाती है, बुरी संगत में फंसा तो फिर वो आदत पड़ गई तो फिर पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। कल भी बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, तुम भगवान के मददगार बनते हो। तो बाबा कहते हैं हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो अगर अशांत होते हो, अब शिव बाबा के बच्चे हो, शांति के सागर के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। है ना, कई बच्चे आते ना, बाबा बस हाँ मुझे शांति चाहिए, तो बाबा के पास आओ। वो तो हीरा है, शिव बाबा हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। मन कभी भी अशांत हो, बाबा के कमरे में चले जाओ और बाबा से शांति की किरणें लो, उसी वक्त शांति का अनुभव होगा। बाबा तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे, ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। अभी ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है ना, दैवी चलन जैसी, ऐसे बहुत है, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने लिए, ये है ही गंदी दुनिया वैशालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी, कहाँ होगी विश्व में शांति? नई दुनिया में। संगम पर तो हो नहीं सकती है, अभी तो संस्कार टकराते हैं, संस्कार आपस में व्यय रखेंगे, कुछ भी करेंगे तो फिर शांति कैसे होगी? संगम पर तो हो नहीं सकती, यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर क्या होगा? शांत रहने का पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं सजा खानी पड़ेगी, सजा खानी पड़ेगी, बाबा सावधान करते हैं, तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग भी जरूर है, कर्म भोग भी होता है। यहाँ दूसरों को अगर दुख दिया तो फिर कर्म भोग ही लग जाता है। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं तो वो भी कर्म भोग है ना। तो बाप के ऊपर तो कोई नहीं है, वो समझाते हैं। अभी हम एक दो को समझाएंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या दुश्मनी भी कर सकता है। लेकिन भगवान तो, ये तो भगवान के माँ वाक्य, वो तो कहेगा ना अपने बच्चों को। तो बाबा कहते हैं बाप के ऊपर तो कोई नहीं है जो उनको कोई समझाए, तो वो तो डायरेक्ट, वो तो अथॉरिटी है, वो बच्चों को समझा सकता है। बाप तो के ऊपर तो कोई नहीं है, वही समझाते हैं बच्चे, गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण बने और गुलगुल नहीं बने, दुख देते रहे, तो बाबा कहते कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया, तो बच्चा किस काम का? भगवान का बच्चा भी बना और फिर वर्षा लेने का हकदार भी नहीं बना, तो बाबा कहते बच्चा किस काम का। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर, कई कपूत बच्चे भी निकल आते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना है जरूर, बाबा को पता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया, तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां तो बहुत है। फिर आओ टॉपिक पर। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना, आखिर तो टकराएंगे, भले कितनी भी सुलह करने की कोशिश करते हैं फिर आखिर तो टकराएंगे, अशांति होगी ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में तो देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता है, तो अभी नहीं होंगे कोई भी देवता, परछाया भी नहीं पड़ सकता है। ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है, धारणा करने में सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं है। कितने सालों से बाबा के बच्चे कहलाते हैं पर फिर भी समझते नहीं है। तो भाई सारी आयु समझाया बाबा ने, 88 वर्षों से बाबा का कार्य चल रहा है फिर भी समझते नहीं है। तो बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है, ये दो अलग चीजें हैं। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो न सके। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं, नहीं तो फिर आर्ग्यू करते रहेंगे शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो नहीं ये लिखा है। पर शास्त्र पढ़े हुए ही नहीं है, बाबा कहते अच्छे हैं। तो पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को ही याद करते हैं, कोई न कोई की मत से, कोई न कोई गुरु मिल जाता है, उनकी मत से भगवान को याद करते हैं। फिर जैसे गुरु सिखलाएगा उस अनुसार फिर याद करते हैं, भक्ति भी सिखलाते हैं, गुरु तो भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए, गुरु जो भी होंगे वो भक्ति भी सिखलाएंगे, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, गुरुओं में भक्ति की ताकत है, तभी तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं उनके, नहीं तो फॉलोअर्स कैसे बनते इतने। भक्ति की ताकत है ना, वो भी एक शक्ति है, तभी तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी, कलयुग में सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं सतयुग में। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता, तो अनेक पॉइंट्स समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तो बहुत ताकत है समझाने की। कैसे समझाते हैं बाबा के बच्चे, कितनी आत्माएं खींच कर आती रहती है। तो धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो, क्या बतलाते हो, श्री कृष्ण आ रहा है। बतलाते हैं ना चित्र दिखाकर श्री कृष्ण का, कि श्री कृष्ण आ रहा है। अब सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। श्री कृष्ण आया था तो कल्प पहले आया था, तो अभी फिर कल हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, तो फिर जरूर श्री कृष्ण आएगा, नहीं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी वर्ल्ड की। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो होगी ना। इसमें भी समझ की बात है कि केवल अकेला तो कृष्ण नहीं आएगा, उसके साथ तो पूरी राजधानी होगी। इसमें भी समझ की बात है। तो तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, सब तो आएंगे नहीं, इतनी सारी कलयुग में दुनिया है, सारी दुनिया थोड़ी स्वर्ग में आएगी। न त्रेता में सब आ सकते हैं, तो भी कितने होंगे। बाबा कहते 33 करोड़ केवल सारी आबादी होगी भी अगर त्रेता की, परंतु द्वापर कलयुग तो देखो अभी 800 करोड़ दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। तो न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़ परमधाम में। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे सिर बोलने चाहिए, पहले स्थापना बोलो, फिर विनाश बोलो, फिर पालना बोलो। बाबा कहते कायदे सिर बोलना चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है, हाँ ये सब बुद्धि में है। अब नई छोटी रचना है ना ब्राह्मणों की, ये नई छोटी रचना है। ये जैसे बाजोली है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग से फिर पैर और सिर मिलता है, तो ये बाजोली है। तो संगम माना सिर और पैर ये मिला हुआ है। अब नई ये जैसे बाजोली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, कलाबाजी करते हैं ना तो चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं, हाँ चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, मुख है देवताएं, फिर भुजाएं है क्षत्रिय, पेट है वैश्य, फिर टांगे हैं शूद्र। तो बाबा कहते ऐसे ये बाजोली है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है, ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, वैरायटी धर्मों का भी झाड़ है, तो वैरायटी रूप भी है विराट रूप। वास्तव में विराट रूप माना ही वैरायटी रूप। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है तब सब धर्म है, शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, कि ऊपर से थोड़ी आएंगे, शूद्रों से ही ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, है ना, वन वन, वन वो उत्सव मनाते हैं ना, कितने झाड़ लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, और बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, ब्राह्मणों की सैपलिंग लगाते हैं, फिर देवता बनेंगे जहां विश्व में शांति होगी। हाँ, तो फिर सब अनेक अधर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, और वो एक धर्म है तो विश्व में शांति है। सारी मुरली एक ही टॉपिक पर, विश्व में शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान। सदा स्मृति रखनी है कि हम है ईश्वरीय संतान। हमें खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है, ये अपने अंदर जांच करनी है। वरदान, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन क्या है? सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाइनेस और होलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती है। वे बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अभ्यक्त इशारा सुनाने से पहले एक सूचना दे रहे हैं कि आप सबको मालूम होगा ना, 22 तारीख से 25 तारीख अगस्त के ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे सारे भारत में। तो उसका बहुत सुखद समाचार आया है, हमारे अवतार भाई अभी मुरली के बाद आकर के सुनाएंगे, क्योंकि ये खास सोशल विंग के द्वारा हुआ है पूरे भारत में। तो इसीलिए सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, जरूरी सुनना है ये समाचार। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस महीने का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अवतार भाई आएंगे, अवतार भाई को माइक दें। यहाँ पर किसने ब्लड डोनेशन किया, हाथ उठाएं। देखो, अरे वाह, बहनों ने भी किया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहनों ने भी किया। तो ब्लड डोनेशन, तो भी कितना ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, इतने ब्राह्मणों ने अपना ब्लड डोनेशन दिया है। अवतार भाई अभी विस्तार से सुनाएंगे और कैसे उससे क्या प्राप्ति हुई वही बताएंगे। सभी बैठे रहेंगे।
ओम शांति। बाप दादा के कुशल सानिध्य और सशक्त छत्र छाया में तथा पूर्वजों के आशीर्वाद और अग्रजों के शुभ प्रेरणाओं से यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ सेवाओं की कार्य योजनाएं बनती ही रहती हैं और हम पिछले 18 सालों से श्रद्धे बड़ी दादी जी का स्मृति दिवस विश्व बंधुत्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। महोत्सव के रूप में उसी श्रृंखला की एक कड़ी में इस बार एक नया आयाम जुड़ा। नया आयाम वो इतना सशक्त और ये विस्तृत बना कि वो एक आंदोलन का रूप ले लिया उसने पूरे देश में और नेपाल में, जैसे कि एक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप धारण कर गया। वो था रक्तदान। ये रक्तदान अपने आप में पूरे यज्ञ के लिए एक नया अनुभव था, नया था। पहले मधुबन में थोड़ा बहुत होता था या बॉम्बे हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत होता था, जिसमें कि 500-700 यूनिट कलेक्शन होती थी, लेकिन इतना बृहत लेवल पर ये रक्तदान का आयोजन हो ये पहली बार हुआ है, जो नया अनुभव था। इससे दो फायदे तो प्रत्यक्ष रूप से हुए हैं। पहला फायदा ये हुआ है यज्ञ को कि जो लोग दूर रहा करते थे, आते नहीं थे या आने में कतराते थे, वो बहुत ही नजदीकी बन गए। और कई जगह से ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हैं कई कोर्स भी करना शुरू किया है कुछ लोगों ने। और दूसरा, जो हमारी बहनें हैं वो स्वास्थ्य के प्रति, अभी 3 महीने कल मेरे साथ ऊपर आ रही थी शांति वन से, तो बता रही थी कि स्वास्थ्य के प्रति बहनों में इतनी जागरूकता अभी तक आई नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ कि उनका जो प्राथमिक हेल्थ होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, बीपी है, शुगर है, तो वो ये चीजें स्वतः ही चेक हो गई। अब वो कह रही थी कि होता क्या है अक्सर करके कि बहनों का समय पर तो वो चेक कराते नहीं हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तब चेक कराते हैं तो या तो ओवरवेट होता है या अंडरवेट हो जाता है, या फिर बीपी हाई होता है या लो रहता है, या हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। और ये काम सहज ही उनका अपने आप ही स्वतः ही ये चेकिंग हो गई, तो उससे भी वो बहुत खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि बहनों में, क्योंकि समाज में एक ये अवधारणा बनी हुई है कि बहनें, विशेष महिलाएं जो हैं, केवल अपनी बहनें ही नहीं, महिलाएं समाज में रक्तदान के लिए मतलब आगे आती नहीं हैं। लेकिन इस अवधारणा को हमारी बहनों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, इस मिथ को जो है खत्म कर दिया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि शांति वन में जो शिविर लगा था उसमें 251 बहनों ने रक्तदान किया जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और 251 ने तो किया ही है, लेकिन किसी कारणवश के मतलब कि लेट हो गया था या ब्लड बैंक की कैपेसिटी की वजह से 60 से 70 बहनें वापस गई। जो रक्तदान नहीं कर पाई, जिसका उनको काफी अफसोस रहा बाद में। और ये चीजें हमने ये देखा है कि हम लोगों ने क्या किया था, पहले केवल गवर्नमेंट के जो बैंक हैं या चैरिटेबल बैंक हैं या रेड क्रॉस के, जो प्राइवेट बैंक हैं उनको इस अभियान में शामिल किया ही नहीं था। तो इस वजह से भी उन बैंकों की जो क्षमता थी उस क्षमता से लोग अधिक आए, बहुत बड़ी संख्या में अधिक लोग आए रक्तदान के लिए, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। तो अब यह भी एक नया अनुभव हुआ है कि अब हमें, क्योंकि बैंकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ब्लड बैंकों को भी आगे के लिए शामिल करने की आवश्यकता महसूस हुई है। आप ये देखेंगे कि सब जगह बहुत ही ये मतलब एक उत्साह लोगों में रहा, जिससे अभी तक हमारे पास जो डाटाज आए हैं कल शाम तक, उसके अनुसार 88,681 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है जो यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में तो बहुत सारी सेवाएं और सफल सेवाएं हुई हैं, कई प्रोजेक्ट बहुत सफल गए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट था और नई योजना में जो है ये सफलता यज्ञ के लिए इतिहास में, यज्ञ के इतिहास में एक अभूतपूर्व सफलता कही जा सकती है कि 88,681 यूनिट रक्तदान हो जाना ये अभूतपूर्व सफलता है। और हमें ये बताया गया कि जो पहले रिकॉर्ड है वो 86,000 का है, तो इस हिसाब से भी ये रिकॉर्ड ब्रेक भी हो चुका है। और अभी तक डाटा कलेक्ट होते ही जा रहे हैं, उसमें बढ़ने की संभावना बलवती है। और ये इसके उत्साह से जो ये जहां जहां से भी फीडबैक आ रही है, विशेषकर बहनें बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि हम वर्षों से जिन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप ही इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे सेंटर पर आ गए पीस पैलेस में, और वहां पर जो रक्तदाताओं के साथ लंबे समय तक रही और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, और उस उत्साह को देखते हुए वो स्वयं भी रक्तदान करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। जब उनके हेल्थ चेक किया तो किसी कारण से उनका रक्त मतलब डोनेशन करने का ये उचित नहीं पाया गया, फिर भी उन्होंने ये किया। इसी तरह से जब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये लॉन्चिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट की 17 अगस्त को ओआरसी दिल्ली में, तो उस समय ये केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश जी नड्डा ने ये लॉन्चिंग की थी और उस समय भी रक्तदान किया था। वो उस समय भी देखा गया था कि बहनों में बहुत उत्साह था, और उस समय जो जितने भी यूनिट इकट्ठी हुई थी, क्योंकि वो एक प्रारंभिक तौर पर एक ये था, क्योंकि उद्घाटन था उस दिन तो सीमित तौर पर करना था, लेकिन बहनें इसमें बहुत उत्साहित थी। और आप लोग देखेंगे कि शांति वन में आपने फोटो वगैरह देखे होंगे, वीडियो वगैरह भी जो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया वगैरह पर और प्रिंट मीडिया पर, तो उसमें भी बहनों की कितनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, पूरी मतलब पैरेलल चल रहा था, भाई और बहनों में जैसे कंपटीशन चल रहा था, इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई थी बहनों की, जो लास्ट में उन्हें वापस जाना पड़ा। तो इसलिए इस प्रोग्राम की अभूतपूर्व सफलता को ध्यान में रखते हुए अब यह परियोजना जो है निरंतर होगी, भविष्य में इसके लिए काफी अभी प्रयास किए जाएंगे, और जो जो चीजें जिन चीज बातों का अनुभव हुआ है वो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। और हुआ यह है कि इन बैंकों को ही हम लोगों ने जब ये इस योजना में शामिल किया तो उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए देश में भी बहुत से लोगों को रक्तदाताओं को वापस जाना पड़ा, क्योंकि कई ऐसे होते हैं, कई और इस तरह से कई रियर ये ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे मेरा ही ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव ग्रुप जो है बहुत रेयर है। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार अहमदाबाद से रात को मेरे लिए एम्बुलेंस आई थी कि भाई आप आकर के रक्तदान आपको ब्लड देना है, तो उसके लिए जो है हम मैं रात को यहां से गया था रक्तदान देने के लिए। और दूसरा आपको ये मतलब हमें भी गर्व है कि जानकी दादी जी का भी रक्त इसी ग्रुप का था, और जब वो बॉम्बे में हॉस्पिटलाइज थी तो ये विशेषकर मेरे लिए ये कहा गया था कि भाई आपको रक्तदान देना है। हालांकि उस समय मैं 60 प्लस हो चुका था, लेकिन जब मेरा ये चेकिंग की गई तो 18 हीमोग्लोबिन था, जो कि यंग किसी यंग का भी नहीं होता है। तो बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप तो दे दो। मैंने कहा मेरा 18 तो क्या 12 भी होता मैं तब भी देता, इतना बड़ा सो अवसर और कब मिल सकता जिंदगी में। तो ये भी हमने किया और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। उसके लिए प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से जो भी भाई बहने इस सेवा से जुड़े हैं, जिन्होंने तन मन धन से लेकर के 20 लाख रुपयों का जोर लगाया एड़ी चोटी का, उन सब का मैं हृदय की अटल गहराइयों से सोशल विंग की ओर से और हेडक्वार्टर की ओर से पूरे यज्ञ की ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अवतार भाई ने भी बहुत मेहनत की और सोशल विंग की तरफ से बहुत सफलता मिली है। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं वो बैठे रहेंगे। जो पटना से जो भट्ठी में आए हाथ उठाएं, थोड़े से आए हैं बाकी अभी आ जाएंगे। अच्छा अभी बता देंगे कि आप सबका नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, और आज शाम से आपकी भट्ठी शुरू होगी 5 बजे से, तो 5 बजे सभी मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। जो भी आएंगे उनको भी आप बता देना कि 5 बजे शाम को मेडिटेशन हॉल में सब आएंगे और आपकी भट्ठी शुरू होगी। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं।